की जय। सब प्रेम से जोर से जय बोलो। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज अगचारी स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सचरी ठाकुर महाराज प्रभु पाद की जय। इस्कान विविटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि
गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सांबेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। बोलो राम लला की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार हो, सब भक्तों की जयकार हो, गुरु और गौरांग की जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार शुद्धवाणी। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वावदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवम् राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखावितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांत गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्प तरुवेश्या कृपा सिंधु वैवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमद भक्ति विदान स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। बड़े प्रेम से एक बार फिर सब मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। गीला तो नहीं है ना, गीला नहीं। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका इस राम कथा में दूसरे दिन स्वागत है। कथा बड़ी संक्षेप में हो रही है, समय के अभाव के कारण कल ऋषि श्रृंग जी की कृपा से भगवान राम दशरथ के पुत्र के रूप में अपने छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो चारों ही विष्णु तत्व हैं, प्रकट हुए अपनी दिव्य लीलाएं करने के लिए। हम लोग वृद्धावस्था में होने के कारण बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों को हमने सुधार करना है। बड़ी गलती आज के समय में हम क्या करते हैं कि भगवान को अपनी तरह ही समझते हैं। भगवान अगर यहां प्रकट भी होते हैं तो वो हमारी तरह नहीं होते, वो फिर भी भगवान है। वो अपने धाम में है तब भी भगवान है, यहां आते हैं तब भी भगवान है। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म कर्मच्च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। जैसे कल हम आपको बता रहे थे सीताराम जी की कृपा से कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण जी का ही स्वरूप है। भगवान ने कहा ना कि धनुर्धारियों में, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो भगवान संक्षेप में कल प्रकट हुए दशरथ जी के यहां, कौशल्या जी ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी जी ने भरत जी को, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ये भगवान की लीलाएं, ये कथाएं अनादि काल से चली आ रही हैं, हम सुनते आ रहे हैं। कथा क्यों सुनी जाती है, क्या इसका अभिप्राय है? हम सब जो वृद्धावस्था में हैं, ये हरि चर्चा, हरि कथा, राम कथा, कृष्ण कथा हमको वृद्धावस्था से मुक्तावस्था की ओर ले जाएगी, क्योंकि भगवान का हर कार्यकलाप दिव्य है, आध्यात्मिक है। एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, राजा, देश का राजा, सारे देश का मालिक है वो कभी स्वेच्छा से कारागार में चला जाता है, जो कारागार में जो बंदी हैं उनको देखने के लिए कि इनकी व्यवस्था कैसी है। वहां वो कारागार में पड़े हुए जो बंदी हैं, जो प्रिजनर हैं, उनमें से अगर कोई एक ये सोचे ओ राजा भी कारागार में आ गया, नहीं, वो स्वेच्छा से वहां गया है, वो स्वेच्छा से चला आएगा। लेकिन वो जो बंदी हैं उसमें कारागार में बंद हैं, वो स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते, उनको कारागार में ही रहना पड़ेगा। हम सब बंदी हैं, कारागार में पड़े हैं। भगवान स्वेच्छा से यहां आते हैं, अलग अलग अवतार लेकर के, अलग अलग युगों में हम लोगों को यहां से निकालने के लिए। भगवान का बस एक ही ध्येय है कि हम जो उनसे बिछड़ी हुई संतान हैं पुनः उनकी प्राप्ति करें। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो कि भगवान से मिलने के लिए ये मनुष्य शरीर ही बस एकमात्र साधन है। इसके द्वारा ही अपने घर को, गौलोक को, वैकुंठ लोक को लौटा जा सकता है। इसके द्वारा ही हम अपने घर को लेकिन हम लोग भगवान से बिछड़े होने के कारण, भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण हम बद्ध जीव हो गए, हम कंडीशन सोल बन गए और हमारी आत्में सारी बदल गई, हमें दोष ही दोष आ गए। तो राम जी की कथा से यह संदेश है, इस कथा का श्रवण करके हमने उन सारे दोषों को निकालना है, हमने निर्दोष बनना है। भगवान जो है वो परम शुद्ध है, आध्यात्मिक है। परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखो बस। और सब में भगवान को मिलने की क्षमता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिल सकते, भगवान सबको मिलते हैं। ये नहीं है कि बड़ा विद्वान भगवान को मिल सकता है, एक बलिग्राम दास वो एक शूद्र थे, कुछ नहीं जानते थे। जगन्नाथ जी उनसे बातें करते थे, जगन्नाथ जी उनके हाथ का अर्पण किया होगा नारियल, उनके हाथ के अर्पण किया होगा आम, उनके हाथ से उठा के ले जाते थे। तो वो कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं, कहते बलिग्राम दास बौरिया मुझे बस भाव अच्छा लगता है, अनपढ़ गंवार शूद्र जात का भगवान से बातें करता है। तो भगवान को मिलने का रास्ता भाव और भक्ति है। राम जी का जीवन भी बड़ा दिव्य है, भाव और भक्ति से भरा पड़ा है। तो राम जी प्रकट हुए, बाल लीलाएं की उन्होंने, अपनी माताओं को सुख दिया, दशरथ जी बड़े प्रसन्न, अभी वृद्धावस्था में प्रकट हुए, दशरथ जी वृद्ध हो चुके हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे जब ये चार, अभी भगवान इतने जल्दी नहीं आते ना, भगवान जो है ना बड़ी कठिनाई से अवतार लेते हैं, बड़े मुश्किल से भगवान आते हैं। और हमें भी ऐसे ही सब्र होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, इस विश्वास से कि जरूर मुझे भगवान एक दिन मिलेंगे। तो बाल लीलाओं का सुख दिया माता कुशल्या को, पिता दशरथ को, चारों सुकुमार जो हैं। भगवान जब वैसे देखो तो बच्चा किसी का भी वो बड़ा अच्छा लगता है, छोटे, लेकिन भगवान बाल रूप में तो वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक जगह गाया है, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र, भगवान चलते हैं बाल रूप में, कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं, और पैंजनिया जो उनके पांव में वो बज रही है, भगवान कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, और बाल रूप में सबको सुख देते हैं भगवान। जैसे कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, लेकिन बाल लीला तो बहुत ही दिव्य है, जिसका आनंद माता यशोदा को और नंद बाबा को प्राप्त हुआ। तो भगवान बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं अपने माता पिताओं, अपने माताओं को, पिता को, सारे अयोध्या वासियों को, सब आनंद ले रहे हैं। अभी भगवान थोड़े से बड़े हो गए पढ़ने लायक, तो ये हमारी पद्धति जो लुप्त हो रही है उसको राम जी की कृपा से उस पद्धति को वापस लाना है। वो पद्धति क्या? गुरुकुल की। चाहे राजा का बेटा है, चाहे एक भिखारी का, सभी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, सब इकट्ठे पढ़ते थे। दशरथ जी ने चारों कुमारों को उनका उपनयन संस्कार किया और उनको लेके अपने आश्रम में, और वहां पर उनको शिक्षा दी गुरुकुल में। भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन धान्ति गुरु हितम। गुरु के लिए ब्रह्मचारी गुरुकुल में कार्य करता है। ये बड़ी दिव्य, देखो ना, जीवन का उद्देश्य तो नर्तन चाहे स्त्री का मेला चाहे पुरुष का, इसका एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, बस और कुछ नहीं इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति, लेकिन हम बद्ध जीव होने के कारण, बद्धावस्था में होने के कारण बस मोह शोक में पड़ जाते हैं, भौतिक सुख सुविधा में पड़ जाते हैं और परिणाम में दुखी होकर संसार से चले जाते हैं। तो भगवान के आने का अभिप्राय केवल यही है कि हम लोगों को यहां से आवागमन से छुड़ाना। देखो तो आवागमन हमारा तभी छूटेगा जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। अगर मैं झांक के देखूं तो मेरा मन तो कितना गंदा है, कैसे मुझे भगवान मिलेंगे? भगवान तो केवल निर्मल मन वाले को मिल सकते हैं। आज जो हमारा मन गंदा हो चुका है, फिर से निर्मल हो सकता है राम जी की लीलाओं का श्रवण करके। उपनयन संस्कार के बाद अभी चारों पुत्र जो हैं भिखारी वेश में गुरु के आश्रम में चले गए, राजकुमार होते हुए भी। रानियां रो रही हैं, लेकिन नहीं, जो पद्धति है, राजा पालन कर रहा, गुरु आ गया पालन। तो गुरु वशिष्ठ जी को राजमहल में नहीं रहते, वन में रहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी अरंधति वन में तपस्या कर रहे हैं। अभी वो और भी बालकों को सबको गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरु जी जब पढ़ाते थे तो कोई निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ये गुरुकुल की पद्धति गुरुदेव प्रभुपाद ने पुनः शुरू की, डैलस में अमेरिका में गुरुकुल खोला, वृंदावन में गुरुकुल खोला। बहुत सारे गुरुकुलों की आवश्यकता है। शुरू से जो बच्चे को संस्कार मिलते हैं वो जीवन भर बने रहते हैं। आज शुरू से बच्चा क्या देखता है? टीवी देखता है, सिनेमा देखता है, बेकार बन जाता है वो, और नरक में जाने की तैयारी करता है। शरीर तो भगवान ने दिया था कि हम उनके पास जाएं, लेकिन आज हम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसको ही रोकना है। तो वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने संस्कार दिए चारों पुत्रों को। एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ मुनि जी बच्चों को बड़ा कर्मठ बना रहे हैं, तो मां का हृदय जो है ना बड़ा कोमल होता है। आज मां भी निर्दयी हो गई। अब लोग कैसे, ये जो भ्रूण हत्या होनी है, बच्चे मारे जा रहे हैं, ये बड़ा महापाप हो रहा है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप भ्रूण हत्या का है। बच्चे जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है बेचारे को। हम सभी मां के पेट में थे, हम सबका जन्म यही पद्धति है संसार में आने की। मां निर्दयी हो गई, क्या होगा, क्या कहां हमारा भविष्य जा रहा है, जीना दुश्वार हो जाएगा। एकमात्र आशा है ये चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों की कृपा, ऐसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से आज हमें ये राम कथा का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद की कृपा से हम राम कथा का ये आनंद ले रहे हैं। तो माता अरुंधति जो गुरु जी की पत्नी है, सब ऋषि मुनि जो है गृहस्थी होते थे, गृहस्थाश्रम कोई बुरा नहीं है, पर गृह मेदी बनना बुरा है। गृह मेदी कौन है, पति पत्नी बच्चे, उनके जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण, बस खाओ पियो और मजा करो, वो गृह मेदी हो गया। अगर पति पत्नी बच्चे हैं, जीवन का केंद्र गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण है, वो गृहस्थी हो गया। इंद्रियों का तर्पण अगर केंद्र है तो गृह मेदी, और गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण जीवन का केंद्र है तो गृहस्थी। आज प्राय लोग गृह मेदी बन रहे हैं, लेकिन गुरु गौरांग कृपा से, नित्यानंद कृपा से हमने फिर से अच्छा गृहस्थी बनना है। तो गुरु पत्नी जो है उन्होंने देखा राजकुमार है, बड़े सुकुमार हैं ये, तो बड़ी तपस्या माताओं से लग गए, तो मां का प्यार देने लगी। तो तब देवी अरुंधति को उनके पति देव वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, देखो देवी, हम अपने इन शिष्यों को कर्मठ बनाना चाहते हैं। आज ये राजकुमार हैं, देखो गुरुदेव सब जानते थे पहले, आज ये राजकुमार हैं, क्या पता कल इनको वनवास में जाना पड़े। शुरू से ऐसा प्रशिक्षण दे दिया, कल जब राम जी वनवास में भी गए कोई समस्या नहीं है, उसमें भी आनंद है। ये है शिक्षा, वनवास में भी जब राम गए तो कोई को बुरा नहीं मान रहे, वो उसको हंसते हंसते वनवास में चलेगी, कहां महलों में रहने वाले, क्योंकि शुरू से प्रशिक्षण ऐसा मिला। तो यहां से हमने ये शिक्षा लेनी है, बड़ी सुंदर शिक्षा गुरु वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों को बाकी सारे बालकों के साथ दी, और वहां से पढ़ लिख करके जब वापस आए, बड़े हो गए, माताओं ने अपने पुत्रों को देखा, बड़ी प्रसन्न है, दशरथ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हैं, आनंद मंगल हो रहा है। तो अभी राम जी की आयु 16 वर्ष है, राम जी 16 वर्ष के हो गए। तो देखो क्ष कहते हैं क्षत्रिय, मान लो अभी जैसे ये हमारा शरीर है ना, इसमें सर ब्राह्मण है, वायु क्षत्रिय, पेट वैश्य और टांगे शूद्र, सब मिलके चलते हैं तो शरीर चलता है। मान लो कोई आक्रमण हम पर करे तो सर को नहीं हम आगे करेंगे, वायु आगे होंगे, हाथ को लगेगी भी तो हाथ आगे रहेगा, डरेगा नहीं, टांग भी नहीं हम आगे करेंगे। क्षत्रिय का अर्थ है जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, क्षत से बचाए, आक्रमण से बचाए। तो विश्वामित्र जी अभी ब्राह्मण हैं और वो वन में तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, तो लेकिन यज्ञ उनका यज्ञ मारीच सुबाहु है ये आकर यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं। राक्षसों का काम क्या है, साधु संतों को दुख देना। राक्षस वृत्ति क्या है, राक्षस वृत्ति संतों को कष्ट पहुंचाना। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, विश्वामित्र जी आगे, विश्वामित्र जी जानते थे भगवान प्रकट हुए हैं, विश्वामित्र जी आगे दशरथ के पास और कहा, राजन हमें असुर जो हैं बड़ा तंग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं तुम अपने बालक राम को हमें दे दो, ताकि इसके द्वारा असुरों का दमन हो सके। अभी दशरथ जी का पुत्र मोह गया, बड़े वृद्धावस्था में पुत्रों ने जन्म लिया, दशरथ जी पुत्र मोह में हैं। दशरथ जी कहते हैं महाराज, दशरथ जी घबरा गए और वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, बेहोश होकर गिर पड़े। हो या कहते महाराज, आप मेरे को ले चलिए, मेरी सेना ले चलिए, मेरे पुत्र को अभी युद्ध की कोई शिक्षा नहीं मिली है, ये सुकुमार कैसे युद्ध करेंगे, कैसे राक्षसों से आपकी रक्षा करेंगे। पहले जब विश्वामित्र जी आए तो उस समय देखो ये हमारी संस्कृति है, संस्कृति क्या है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता की पूजा देवताओं के समान करनी चाहिए। अतिथि कोई घर में आ जाए, अतिथि उसे कहते हैं जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसके घर में कोई अतिथि आता है ना, मेहमान आता है, उस घर को बड़ा भाग्यशाली माना गया है। लेकिन आज ये विदेशियां घुसने के कारण क्या हो रहा है, अगर किसी के घर में आप बिना बताए चले जाओ तो कहेगा क्यों आए जी, आपने बताया क्यों नहीं, ये अंग्रेजों की संस्कृति है। मान लो विदेश में आप जाए ना किसी के घर में, अगर बिना उसको बताए हुए, या तो पुलिस बुलाएगा वो, या कुत्ता खोल देगा। एक और मेरे साथ भी घटना घटी। एक मुसलमान, प्रभुपाद ने कहा मुसलमानों को, मुसलमान भी हमारे ही भाई हैं, तो एक पाकिस्तान का मुसलमान पहले मिला, अच्छी बातचीत की उसने, मैंने कहा भाई हमारे मेंबर बनो, आप चुप रहा, मैंने बन जाएगा, उसके घर में चला गया। उसने पत्नी से जब बच्चों ने सलाह की होगी तो उसके विरोध में हो गए, बातचीत की, तो अभी बड़ा बुरा मुंह बना रहा है, वो सारे बुरे मुंह बना रहे हैं। तो मैंने देखा भाई, मैंने अच्छा जी धन्यवाद, जब मैं उठ के जाने लगा पीछे से कुत्ता लगा दिया, उन्होंने कुत्ता खोल दिया। फिर जब कुत्ता नजदीक आया, बड़ा भवर शेर कुत्ता, और फिर मुसलमान रोका कुत्ते को। मैंने कहा भाई धन्यवाद, ये है अंग्रेजों का कल्चर। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है, अतिथि आए तो बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ घर में अतिथि आया। कितनी कथाएं अतिथियों की, महाराजा रंती देव उपवास के बाद में उनके अतिथि आ गया, जो भोजन आके रखा था अतिथि को दे दिया उन्होंने, बड़े वर्णन है। तो विश्वामित्र जी जब आए दशरथ के पास, उस समय महाराज दशरथ ने स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनकी आरती की, अपने सिंहासन पर बिठाया, महाराज आज्ञा करो मुझे, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपको वचन देता हूं जो आप कहेंगे वही करूंगा, लेकिन पुत्र मांगे जाओ तो अभी महाराजा दशरथ के लिए ये मृत्यु के समान हो गया। दो बार मूर्छित हो गए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आ रहा है, महाराजा दशरथ दो बार मूर्छित हो गए, कह रहे वाह ये नहीं मैं कर सकता, ये मेरे बच्चे मेरे सुकुमार, मुझे ले चलो, मेरी सेना को ले चलो, पर इनको मना। दशरथ की इन बातों पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और खड़े हो गए, तूने मुझे वचन दिया था, वचन भंग कर रहे हो, मैं जा रहा हूं, मैं यहां बैठना भी ठीक नहीं है। तो वशिष्ठ जी खड़े हुए, वशिष्ठ जी ने कहा, जो गुरु हैं दशरथ जी के, राजन आपने जो वचन दिया है उसको पूरा करो, निश्चिंत रहो आपके राम जी इनके साथ जाने से सुरक्षित हैं। वशिष्ठ जी को सारा पता है। तो वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी को थोड़ी सी सांत्वना मिली, अच्छा तो राम जी चलने के लिए तैयार हो गए, और राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, बोलो राम लक्ष्मण भगवान की, दोनों चल पड़े। अभी उन दोनों को लेकर के विश्वामित्र जी वन में आ गए, वन में आए तो पहले उनकी भेंट जो है ताड़का, ताड़का जो मारीच की मां थी, इनकी बड़ी कथा, बड़ी लंबी कथा है, इनको इश्रापवश ये राक्षसी बनी थी, ऋषि के इश्रापवश। तो अभी ताड़का वहां उस वन में उसने जो है वो घेरा डाल रखा है। तो तब विश्वामित्र जी बताते हैं, राम ये वन जो है ना, इसमें वैसे पहले विश्वामित्र जी ने राम जी को सारी विद्याएं सिखाई, मंत्र सिखाए, और विश्वामित्र जी ने ये कहा, राम तुम सब पहले सब कुछ जानते हो, फिर भी ये जो विद्या मेरे पास है मैं तुम्हें दे रहा हूं। राम जी भगवान है लेकिन नललीला भगवान कर रहे हैं, सारे उनको मंत्र सिखाए। तो ताड़का जो है वो उस वन में रहती है, उसने कई ऋषि मुनियों को खाया हुआ है, उसका काम ही यही है, बड़ी भयानक राक्षसी, बड़ा भयानक रूप उसका। तो ताड़का जो है वो महाराज अपना विश्वामित्र जी को बड़ा परेशान करती थी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारिच एवं सुबाहु नामक दो राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। तो आप देखो, विश्वामित्र जी चाहते तो इन राक्षसों का वध कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। क्यों? ब्राह्मण का काम यही नहीं है, लड़ाई करना जो है ना क्षत्रिय का काम है। ब्राह्मण का काम पठन पाठन यजन जाजन, क्षत्रिय का काम क्या है? शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गाय का पालन करना, खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना, ये वैश्य का काम, और सेवा का काम शूद्र का। ये चार वर्ण जो है शरीर में भी ये चार वर्ण हैं। तो विश्वामित्र इसलिए राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए, और अभी वो बता रहे हैं सारी बात। और ताड़का जो है, बड़ी लंबी बात है, ताड़का जो है उसको देखा तो भगवान के वन में आते ही उसने देखा तो ताड़का ने एक आंदड़ क्या कहती है तूफान जैसा चला दिया ऐसा। तो थोड़ी देर राम लक्ष्मण ने कुछ नहीं देख पाए। अभी सायंकाल हो रहा है और विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम ये स्त्री है, तुम इसको मारने में संकोच मत करो। वैसे स्त्री को स्त्री का वध नहीं बताया शास्त्र में, ये बड़ी दुष्ट राक्षसी है और बड़ी पाप में इसका जीवन है। तो राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं इसके हाथ पांव काट दूंगा ताकि ये असहाय हो जाए, कुछ नहीं कर सके, किसी को ये कष्ट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन राम जी ने जब बाण मारा तो ताड़का जो है ना, इतनी बड़ी राक्षसी धराशायी हो गई, उसके प्राण अंत ही हो गए, वो मर गई। विश्वामित्र जी जो हैं वे और मारीच और सुबाहु, सुबाहु का भी वध कर दिया राम जी ने, लेकिन मारीच को नहीं मारा। बाण के आगे फर होती है जो लगने से आर पार हो जाता है बाण, तो बिना फर का बाण जो है राम जी ने मारीच को मारा और उसको 100 योजन उठाकर समुद्र के उस पार फेंक दिया। क्योंकि मारीच का भी और भी आगे काम था, रामलीला में मारीच ने और कार्य भी करना था, क्योंकि इसने मृग बनना था, तो भगवान ने उसको नहीं मारा। ऐसे भगवान राक्षसों का, ये दो राक्षसों का वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, करते हुए भगवान फिर भगवान राम के साथ विश्वामित्र जी जो हैं वो मिथिलापुरी में पहुंचे। और जब मिथिलापुरी में भगवान राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी पधारे तो उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा आश्रम, टूटा फूटा आश्रम वहां पड़ा हुआ है मिथिलापुरी से पहले ही। तो राम जी पूछते हैं, ऋषिवर ये किसका आश्रम है? तो तब विश्वामित्र जी सारी कथा सुनाते हैं, हे राम यहां पर गौतम ऋषि का वास था, गौतम ऋषि रहते थे, और ये जो तुम एक शिला देख रहे हो ये उनकी पत्नी अहल्या है, ये शिला के रूप में पड़ी हुई है बड़े समय से, और तुम्हारे चरणों के स्पर्श की ये प्रतीक्षा कर रही है। अब देखो यहां इस कथा से हमने क्या शिक्षा लेनी है, शिक्षा से ये लेनी है कि अहल्या जो थी वो बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी, गौतम ऋषि की पत्नी। देखो ये विषय वासनाएं इतनी प्रबल हैं, जो विषय वासनाओं को पूरा करने में लगता है वो कभी भी तृप्त नहीं होता। तो स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक में पुण्य करने से आदमी जाता है और वहां विषय वासनाओं को भोगता है, सुंदर अप्सराएं हैं, लंबी आयु है, खाने पीने के लिए बढ़िया है। तो देवताओं को जो राजा इंद्र है वहां एक से एक सुंदर अप्सरा है उसके लिए, लेकिन वहां भी इंद्र महाराज तृप्त नहीं होते। तो उनको जब उन्होंने देखा अहल्या इतनी सुंदर है तो अहल्या को छलने के लिए इंद्र देव पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौतम ऋषि का रूप बनाया, गौतम ऋषि का रूप बनाया, उधर चंद्रमा को कहा तुम ऐसे समय ऐसी जगह आ जाना जब 4 बजे के समय तुम आते हो तो देवताओं का राजा, तो सारे चंद्रमा आदि सौर उनके अधीन हैं। चंद्रमा जब रात को 4 बजे जहां होते हैं वहां आ गए, मुर्गे को कह दिया तुम बांग दे देना। अब इस समय ये था रात का कोई 2 बजे का समय, अर्धरात्रि थी। मुर्गे ने पहले घड़ियां घड़ियां कहा, मुर्गे ने बांग दी तो ऋषि उठ के बाहर आए, देखा तो चंद्रमा वहां पर है जहां वो 4 बजे होता है वो स्नान कर। तो आकर ऋषि जी ने क्या किया, अपना जो भी सामान लिया और गंगा स्नान के लिए चल पड़े। जब वो चल पड़े तो अभी तो रात्रि का समय है, आज जब गंगा माता को प्रणाम किया, गंगा का स्पर्श किया, तो गंगा माता कहती है ऋषिवर अभी तो अर्धरात्रि में आप आ गई, ये नहाने का समय नहीं है, माता आपके साथ छल हुआ है। गौतम ऋषि वापस गए, तो इधर इंद्रदेव ने क्या किया कि गौतम ऋषि का रूप बना करके वो अहल्या के साथ समागम कर रहे हैं, अहल्या का संग, क्योंकि बड़ी सुंदर है अहल्या। तो ये विषय वासनाएं जो है ना यही बंधन है, यही हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। चाहे वो इंद्र है, चाहे देवता है, चाहे कोई है। वैसे वर्णन आता है कि स्वर्गलोक के जो प्राणी है ना वो भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति केवल मृत्यु लोक में यहां बताई है। देवता भी तरसते हैं जिसको, वह मिला मानुष तन तुझको। देवता लोग इस तन को तरसते हैं कि हमको मिले, हम भक्ति करें और वैकुंठ लोक को चले जाएं। स्वर्गलोक में जाकर के जीव जो है ना, भगवान ने 15वें अध्याय में वर्णन किया है, क्षणे पुणे मृत्युलोक के विशंति, संचित पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो जीव मृत्युलोक में पुनः आ जाता है। सुख भोगने के बाद सदा के लिए कोई स्वर्ग में नहीं रह सकता, इसलिए हमें स्वर्ग में जाने की भी कामना नहीं करनी, हमें तो गौलोक धाम में भगवान के पास जाना है। और भगवान के पास जाने के लिए क्या करना है, केवल भक्ति। कैसी निष्काम, अन्ना विलासता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकुलेना कृष्णानु शिलम भक्ति उत्तमा। भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। प्रभु मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे अनुजाई चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना है, ना मुझे बड़ा कवि बनना है, तो फिर क्या, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? बिना हित के। मैं आपकी सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ये जो सेवा है इसी से कृष्ण प्रेम मिलेगा, राम प्रेम मिलेगा। सेवा में निपुण हनुमान जी हैं, कुछ नहीं चाहते अपने, केवल राम जी की सेवा। जब आगे वो समय के अनुसार ही होगा, जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भरत जी को सारी बातें सुना रहे हैं, तो तब राम जी ने ये कहा, भरत भाई कपि से उरिन हम नाहीं। भरत, कपि कौन? हनुमान जी। अरे भगवान को किसका ऋण है, लेकिन जो उनकी सेवा करता है भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने, राम जी ने भरत जी को कहा, कपि से हम उरिनी नहीं हो सकते, इनका बहुत ऋण है। क्या? सेवा में। बस हनुमान जी हर समय राम जी की सेवा में लगे रहते थे। हम सबका धर्म सेवा है। आज हम सेवा तो कर रहे हैं, राम जी की नहीं, कृष्ण की नहीं, हैं, इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूं, मैं त्वचा की सेवा कर रहा हूं, जीभा की सेवा कर रहा हूं, कानों की सेवा कर रहा हूं। जीभा को कई प्रकार के स्वाद चखने के लिए चाहिए, कानों को फिल्मी गाने सुनने के लिए चाहिए, त्वचा का सुंदर स्त्री चाहिए। मैं तो इंद्रियों की सेवा कर रहा हूं, मैं तो इंद्रियों का दास हूं। इंद्रियों की दासता मुझे नरक में ले जाएगी, पर इंद्रियों के जो स्वामी भगवान हैं, अगर मैं उनका दास बन गया तो मैं अपने घर को लौट सकूंगा, मैं गौलोक धाम को जा सकूंगा, जहां मेरा जीवन सुखमय होगा, सत चित आनंद विग्रह, वहां कोई समस्या नहीं होगी। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी जीवन का उद्देश्य अपने घर को, यानी कि गौलोक धाम को लौटना है। मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। और जो मैंने समझ रखा है ये मेरे मलिन मन की भटकना है। तो अभी जब इंद्र भेष बदल के, शक्ति तो उनमें बनी है, गौतम ऋषि बने हुए हैं, अभी जब उधर से गौतम ऋषि जी को गंगा मैया ने वापस भेज दिया, आए तो घर से एक, अंदर से एक और गौतम निकला, देख लिया उन्होंने, कहोगे तो चीटा मारा तो इंद्र का असल रूप प्रकट हो गया। बोले कि तुम्हें स्त्री से इतना प्रेम है, तो श्राप देख करके गौतम ऋषि के शरीर में, सारे शरीर में स्त्री के गुप्त अंग जो है वो बना दिए, तुम्हें संग इससे इतना प्रेम है ना। और जब पत्नी को श्राप दिया, जब तो पत्थर की शिला बन जाओ। अब यह प्रश्न उठता है, इसमें क्या दोष है अहल्या का? शिला बनने का श्राप जो है गौतम ऋषि ने गलत दिया? नहीं। कैसे गलत नहीं दिया? जो सती नारी है ना, उसको अगर पर पुरुष स्पर्श करेगा तो भस्म हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। कई उदाहरण ऐसे, रावण का खात्मा कैसे हुआ? परम पवित्र सती माता सीता है, रावण का सर्वनाश हो गया। द्रौपदी के कारण, द्रौपदी सती नारी है, कौरवों का सर्वनाश हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो चाहे इंद्र भेष बदल के आया था, पर अगर वो पूरी पतिव्रता होती, सती होती, तो भस्म हो जाता, इंद्र भस्म हो जाता, चाहे भेष बदल के ही आया था। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमने यहां से यह शिक्षा लेनी है कि विषय वासनाओं से बचना है, विषय वासनाओं से बचना है। गृहस्थ जीवन में आदमी इंद्रियों का तर्पण कर सकता है, अनुमति है, पर कुछ नियमों के अनुसार, सुख भोग के लिए नहीं। स्त्री संघ सुख भोग के लिए जो करेगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। स्त्री संघ केवल संतान के लिए, जैसे सुअर कुत्ता गंदगी खाते हैं, पर नर मादा का संघ कब करेगा? जब जरूरत है, नहीं तो नहीं करेगा। हम सुअर कुत्ते से विकार हो गए, अरे नर्तन ये बड़ा ही दुर्लभ है, ये शरीर बड़ा अनमोल है, 84 लाख योनियों में से चक्कर लगाने के बाद इसकी प्राप्ति हुई है और आज ये मिला है और मैं इसको बेकार में गंवा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भोग विलास में इसको बिता रहा हूं। अरे ये तो मुझे हर योनि में मिला। अभी देखो, पशु के लिए, कुत्ते के लिए, सुअर के लिए, वैसे वो नर मादा का संग करेगा कब जरूरत होगी? नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए मां भी बहन, मां भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये भेदभाव उसके लिए नहीं है। तो सुअर कुत्ते के शरीर में भी तो ये भोग विलास उपलब्ध हैं, पर मनुष्य शरीर में भी वो हमारी क्या कहते हैं, भोगों की कामना है, लेकिन उसको भक्ति के द्वारा, भगवान राम की कृपा के द्वारा उसको हमने समाप्त करना है, भोग कामना को समाप्त करना है और हमने भक्त बनना है। और जैसे भक्त बनेंगे हमारा मंगल होगा। तो भगवान राम जी ने अपने दिव्य चरण का स्पर्श उस अहल्या को किया जो कि शिला के रूप में पड़ी थी। राम जी का चरण स्पर्श होते ही अहल्या जो है वो स्त्री रूप में आ गई, उसका उद्धार हो गया और धाम में वो पुनः चली गई। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो अभी भगवान राम अहल्या जी का उद्धार करके भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी राम जी मिथिला में जनकपुरी में जा रहे हैं। जनकपुरी में महाराजा जनक ने अपनी पुत्री जनक नंदिनी का स्वयंवर रखा हुआ है। तो विश्वामित्र जी को भी आमंत्रण मिला उस स्वयंवर में आने के लिए, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद चाहिए। तो राम लक्ष्मण जी भी साथ हैं, अभी मिथिला में पहुंच गए राजा जनक के यहां। राजा जनक ने उनका सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया, उनको बड़ा सुंदर ठहरने की सारी व्यवस्था की उनके लिए। जब राजा जनक ने राम जी को देखा तो राजा जनक के मन में आया, हा कभी मेरी पुत्री का ये पति बने, मेरा दामाद बने तो कितना अच्छा होगा। फिर मन में आया, ये इतने सुकुमार हैं, इतना बड़ा धनुष मैंने जो प्रतिज्ञा कर दी है, जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वो ही सीता से नाता जोड़ेगा, ये कैसे तोड़ पाएंगे? मन में शंका हो रही है। भगवान देखने में तो सुकुमार हैं, लेकिन भगवान से बड़ा शक्तिशाली कौन है? अभी कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे जब पूरा पर्वत इस उंगली पर उठा लिया है? भगवान की शक्ति असीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी। तो स्वागत हुआ। तो उन्होंने उनको जो है सब बताया, जनक जी महाराज ने, ऐसे ऐसे मैंने अपने पुत्री का जो है वो स्वयंवर रखा हुआ है और स्वयंवर में जो भाग लिया राम जी ने, तो उसमें वाल्मीकि राम में तो वैसे अलग सा ही वर्णन है, यही रामायण वैसे सही है। वैसे तो स्वयंवर में और भी कई लोग बुलाए थे, लेकिन राम जी ने बात बात में ही उस धनुष को, जिसको 300 आदमियों ने उठाया था, एक आदमी से उठता भी नहीं था, वो इतना बड़ा धनुष, उस धनुष के ऊपर वो जो है ना चिल्ला चढ़ाना था उसको, जो है ना उसकी डोरी को बांधना था, और डोरी क्या बांधी, इतना बड़ा धनुष राम जी ने अकेले उठा लिया और चिल्ला क्या चढ़ाना था, और टूट ही गया बीच में से, धनुष टूट गया। जनक जी अवाक, कोई उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये राम इतने सुकुमार इतने बड़े धनुष को तोड़ सकेंगे। सीता जी का नाता राम से जुड़ गया। बोलो सीता राम भगवान की। बड़े प्रेम से सबने बोलना है, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। अभी देखो इधर माताएं बैठी हैं, कुछ पुरुष भी बैठे हुए हैं, वैसे पुरुषों की ये साइड है, माताओं की ये साइड है। अभी आप लोग जो है ना कीर्तन थोड़ा ढीला कर रहे हो, कीर्तन जो है ना माताएं अलग बोलेंगी पुरुष अलग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अच्छा जिसकी ज्यादा आवाज होगी ना उसको इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा? मैं अपनी घड़ी दे दूंगा, ये देखो, जो जोर से बोलेगा। माताओं की संख्या कम है बस, पर माताएं बोलने में तेज बोलती हैं ना। एक बार एक स्त्री कहती है दूसरी को, मैं अपनी पति से बड़ा तंग आ चुकी हूं। कहते क्यों? कहते रात को सोया होगा बड़बड़ाता है, बड़ा शोर मचाता है। वो कहती है फिर दिन को बोलने का मौका दिया कर तू उसको। दिन को तू उसको बोलने का मौका नहीं देती तो रात को ही बड़बड़ाएगा बेचारा। तो माताओं यहां आपने दिखानी है अपनी करामात। लेडीज फर्स्ट है। मैं कहूंगा प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, माताएं सीता सीता राम बोलो, राम बोलेंगे क्या राधे राधे श्याम बोलो है? प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, माताओं आप लग क्यों बैठे, मिलके इनके साथ इकट्ठी जरा आवाज निकालो ना, संगठन होना चाहिए। आप कुर्सी यहां पड़ी है, कुर्सी में बैठो, यहां पर मिलके आवाज निकालो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, देखो आपकी संख्या ज्यादा और जोर भी बड़ा लगा रहे बाप है। माताओं को पीछे नहीं ना करो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, देखो भाई ऐसा है चिल्लाना नहीं, प्रेम से बोलो, जोर से तो बोलो, प्रेम से तो बुलाओ, आप ऐसे गला फाड़ रहे हो चिल्ला रहे हो ऐसा नहीं करना। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो,
राधे राधे श्याम बोलो,
प्रेम से मिल हरि नाम बोलो,
राधे राधे श्याम बोलो,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे
हरे कृष्णा कृष्णा
मिलकर सारे बोलो,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
बोलो सीता राम भगवान की, बोलो राधे श्याम भगवान की। अब जजमेंट भी मुझे ही देनी है, आवाज ज्यादा किसकी थी, ठीक है ठीक है। अभी देखो कि इन्होंने जोर बड़ा लगाया, भाइयों ने चिल्लाए सारे, और माताओं आपने भी कोशिश की पर आवाज थोड़ी ढीली थी आपकी, पर सबसे ज्यादा आवाज जो तो पता किसकी थी, माइक की। बोलो गलत तो नहीं कह रहा, ठीक कह रहा हूं नहीं? इसलिए घड़ी मेरे पास ही रहेगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो सीताराम का विवाह हो गया। परशुराम जी को पता लगा, धनुष की बड़ी आवाज हुई, इतना बड़ा धनुष जिसे 300 आदमी उठाते हैं। परशुराम जी बड़े क्रोध में वहां आ गए, किसने ये धनुष तोड़ा? सारे जो सब घबरा गए, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण परिवार में भगवान के वो भी अवतार थे। बोलो परशुराम भगवान की। उनको थोड़ा अहंकार हो गया था, क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, राजाओं का वध किया था। राजा लोग ठीक तरह से राज नहीं कर रहे थे, परशुराम जी ने साफ कर दिया, उनको मार दिया। गुरुदेव किसने तोड़ा यह धनुष? सब घबरा गए। तो भगवान राम ने परशुराम जी का मान मर्दन किया। अभी परशुराम जी ने पहचाना कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्होंने उनको प्रणाम किया और परशुराम जी पुनः जो है तपस्या के लिए चले गए। तो अभी श्री राम जी जो हैं, अब वापस विवाह जनक जी ने सीता जी का राम से किया, लक्ष्मण जी का भी वहीं हुआ, बाकी पुत्रियों से भरत शत्रुघ्न सब का विवाह हुआ। उधर से जो हैं अपना दशरथ जी, उनको बुलाया गया, सुंदर रीति से सब विवाह संपन्न हुआ चारों भाइयों का, जनक जी की पुत्रियों से हुआ। और अभी राम जी जो हैं वापस आते हैं, असुरों का जो है सफाया करके वापस जब अयोध्या में आते हैं, तो राम जी के अभिषेक की तैयारी हो रही है, राज्य अभिषेक। अभी दशरथ जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। देखो ये हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति ये है कि राजा जब वृद्धावस्था आ जाती है, अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर स्वयं तपस्या के लिए वन को चला जाता है। लेकिन आजकल के जो नाम के राजा कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, ये जो नाम के जो पॉलिटिशियन हैं, कहते हैं 80 साल का बुढ़ा भी हो जाएगा कुर्सी नहीं छोड़ेगा, या तो खुद मर जाए तब कुर्सी छोड़ेगा, या कोई गोली मार दे फिर छोड़ेगा, खुद छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं है कुछ भी। ये नहीं कि दिन मैंने सब छोड़ना है, तो हमने किसी चीज से चिपका नहीं रहना, क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा ये है। और चैतन्य भगवान ने क्या शिक्षा दी, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तक एका पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां वदर्जस्तमहं प्रपद्ये। भगवान ने ये चैतन्य रूप धारण करके वैराग्य की विद्या, त्याग से भगवत प्राप्ति होगी। इस नश्वर संसार से, स्त्री से, पुत्र से, घर से, बाहर से अगर हम चिपके रहे ना, तो पुनः संसार में आना पड़ेगा। पुनः संसार में आना मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। जैसे शंकर भगवान महादेव, देवों में देव महादेव, उन्होंने क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरनम पुनरपि जननम पुनरपि मरनम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयन। इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसार बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाही मुरारे, कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, बोलो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन। रमन हरि गोविंद जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो शिव शंकर भगवान की
जय
आपको पता है हम सबके सरताज शंकर भगवान है वैष्णवानम यथा शंभु निकाल वैष्णव तो शंकर भगवान देवों में देव महादेव क्या कह रहे हैं हम सबको पता क्या कहा शंकर भगवान ने जो प्रभुपाद हम सबको कहते थे प्रभुपाद हमको कहते थे रास्कल मूर्ख मते करता है मूर्ख रास्कल कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के गर्भ में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है ये इस संसार का दुस्तर प्रभाव है इस संसार का बुरा प्रभाव क्या है बार बार जन्म बार बार मृत्यु बार बार मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना तो महादेव क्या कहते हैं कृपाई पारे पाखी मुरारे तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा ले ले मुरारी किसका नाम है भला बोलो कृष्ण भगवान का भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था मैं बोलूंगा कृष्ण मुरारी आप बोलेंगे गिरवरधारी कृष्ण मुरारी
गिरवरधारी
कृष्ण मुरारी
गिरवरधारी
गिरवरधारी
कृष्ण मुरारी
गिरवरधारी
कृष्ण मुरारी
कृष्ण कन्हैया राधा कन्हैया कृष्ण कन्हैया गोविंद जय जय
गोपाल जय जय
गोपाल जय जय
गोविंद जय जय
महादेव कहते हैं मूर्ख तेरा बार बार जन्म हो रहा है बार बार तेरी मृत्यु हो रही है बार बार तुम मां के गर्भ में आ रहा है ये इस संसार का दुस्तर प्रभाव है बुरा प्रभाव है तुझे ये नर्तन मिला है और मूर्ख गोविंद का तू भजन कर गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को ही भजो और किसी को तीन बार इसलिए कहा है तो गोविंद ही तेरा जो है ना ये आवागमन ये संसार शरीरों का परिवर्तन छुड़ा सकते हैं और कोई तेरा ये शरीरों का परिवर्तन नहीं छुड़ा सकता रामकृष्ण में जैसे राम की भक्ति से भी आपको मुक्ति मिल सकती है ऐसी बात नहीं है लेकिन कृष्ण सबका कारण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा ही वर्णन आता है राम जी को 14 कला कहा है इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे भगवान के कला अवतार अंश अवतार मन मंत्र अवतार शक्ति वेश अवतार लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है तो राम जी 14 कला लेके आए लेकिन कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण तो शंकर भगवान कहते हैं तू कृपा ले ले मुरारी श्री कृष्ण की क्योंकि तेरा आवागमन केवल श्री कृष्ण छुड़ा सकते हैं और कोई तेरा आवागमन नहीं छुड़ा सकता मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं हम सबको ये शरीरों का परिवर्तन जो आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है लेकिन मेरा मन इतना मूर्ख है उस दुखदाई शरीर को सुखदाई समझ रहा है हैं दुखदाई पत्नी को सुखदाई समझ रहा है जब छोटा था तो मेरा जन्म पत्र बना, तो जन्म पत्र में लिखा था भाई इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। मैंने कहा ये पंडित जी ने गलत लिखा है। मैंने क्यों? उसको लिखना चाहिए इसके भाग्य में स्त्री दुख नहीं है। अरे स्त्री का सुख हुआ किसी को? अरे दुख ही दुख। हाँ अगर भक्त बन जाओ माताओं आप तो आप देवी हो, प्रणाम सबको। अरे अहल्या उधर से अत्रि ऋषि की पत्नी, क्या नाम था उनका? अनसुया। धन्य है माता अनसुया, धन्य है सती सावित्री, इन्हें को सती है, सत्यवान सती सावित्री यमराज से जाकर अपने पति को ले आई थी, वापस आत्मा को ले आई थी। ये भी नारियां हैं। अनसुया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने छोटे छोटे बालक बना दिया। लेकिन आज दुख क्यों है? सुखी कोई नहीं है। कारण जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण बन गया। तो वैष्णवानम यथा शंभु ये वर्णन आता है। तो वैष्णवों के हमारे सबके वंदनीय है शंकर भगवान। बोलो वैष्णव के सरताज शंकर भगवान की। कभी शंकर भगवान का उपहास मत करो। उनसे मांगना तो कृष्ण भक्ति मांगो, वैसे महादेव मुझे गोविंद की भक्ति दो। हम जब शंकर के मंदिर में जाएंगे ना कहेंगे हे शंकर भगवान मैं आपके आगे 10 पैसे चढ़ा रहा हूं या चढ़ा रही हूं, आप तो देख ही रहे होंगे आपके तो भंडार भरे हैं, हे महादेव मुझे ज्यादा नहीं 10 लाख का फायदा कर देना। क्या अज्ञानता है। अरे उनसे केवल भक्ति मांगो। वो कहते गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। महादेव को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल कृष्ण। जब भी देखो बस अपना तपस्या में बैठे रहते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हम मूर्ख जब उनके पास जब जाते हैं ना तो भौतिक इच्छाएं करते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, गोविंद का भजन और ये महामंत्र द ग्रेट चांट फॉर डिलीवरेंस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, इसमें कृष्ण भी है राम भी है और राधा रानी भी हैं। ये मंत्र कलयुग का तारक मंत्र यही है। इसका आश्रय लो, इसका सहारा लो, किनारा मिलेगा, भगवान मिल जाएंगे। इसको जपो, कल बताया था ना कितना जप करना है। अभी हम कई भक्त जो है बड़ी मुश्किल से 16 माला की पट 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 करके बड़ी कठिनाई से 16 माला हुई और दूसरे दिन प्रभु जी को ढूंढ रहे हैं। प्रभु जी क्या क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी माला गुम हो गई। और माला 16 करके कहां फेंक दी, पता ही नहीं माला का, दूसरे दिन माला ही नहीं। अरे माला हमारी प्राण है, क्यों गुम हुई? माला कभी गुम नहीं होने चाहिए। इस बात को याद रखना है। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये नहीं थोड़ा सा जप किया छोड़ दिया, ना जप कभी 24 घंटे सिमरन। और मैंने अपने गुरुदेव को देखा, हर समय सिमरन में ही रहते थे मेरे गुरुदेव प्रभुपाद। बड़े दिव्य पुरुष थे मेरे गुरु महाराज हैं, उनके पास बैठ के इतना आनंद मंगल। कल तो एक आनंद की बात सुनाई थी आपको, आज कथा बहुत ज्यादा करनी है, समय बीता जा रहा है। तो अभी राज्य अभिषेक होने जा रहा है, घोषणा हो गई। उस समय भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो ननसाल गए थे, अपने नाना के यहां गए थे। अच्छा एक नई बात पता लगी वाल्मीकि रामायण से, आपको पता जो मंथरा थी, मंथरा कौन थी? किसी को नहीं पता कौन थी। क्या क्या कहा? कैकेयी की दासी तो थी, हाँ ये है अप्सरा थी वो। और देवताओं ने भेजा था उसको ताकि राम जी को वनवास हो, अगर वनवास राम जी को नहीं होगा तो रावण कैसे मरेगा, अगर रावण नहीं मरेगा तो देवता सुखी कैसे होंगे। रावण ने तो इतना अंत तक फैला रखा था, अभी यहां तक बात क्या है, रावण का इतना अंतक था, देवता भी बेचारे छुपते फिरते थे उससे। बड़ी शक्ति थी रावण में, वो अप्सरा थी और मंथरा बन के आई हुई है। तो राज्यभिषेक की तैयारी हो रही है। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी के साथ ककेई भी गई, कहा इस पृथ्वी के राजे जो है ना स्वर्ग लोक में जाते थे, इतने महान हुआ करते। दशरथ जी तो बहुत महान थे, अभी कहां, अभी स्वर्ग लोक में कहां जाते, सब नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाव भक्ति खत्म हो गई, नियम खत्म हो गए। लेकिन अगर आप प्रभुपाद की कृपा लें, गौरांग कृपा लें और महामंत्र का जप करें, सबका मंगल हो सकता है। यह महामंत्र सबका मंगल कर देगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम राम राम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा प्रस्ताया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशका। प्रभुपाद को कभी नहीं भूलना, चाहे आप प्रभुपाद के शिष्य हो या नहीं हो, इनको याद रखना, क्योंकि ये आज जो कुछ हम कर रहे हैं ना, जो आगे 10,000 साल तक होगा, इनकी कृपा से ही होगा। इसलिए इनके चरणों में भरोसा रखना, ये रक्षा करेंगे आपकी, आज भी करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब लोग कैसे करेंगे, थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ इधर। ये जो बालक देख रहे हैं ना आप, ये मैरिन इंजीनियर क्वालिफाइड, बहुत बड़े घर से है। इसका मामा बता दूं आपको मैं, ब्रजहरी जी, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र में, सगा मामा, अभी बहुत बड़ी पोस्ट में, दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई उनकी, यही महाराष्ट्र में ही है। वो है थोड़े से बेचारे नास्तिक, पर उनको भी आस्तिक बनाना चाहिए। ये मैरिन इंजीनियर 32,000 यहां तनख्वाह लेता था, आ गया, समर्पण कर दिया प्रभुपाद के चरणों में। 4 साल पहले इसको ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज, कोमा में चला गया। मैं वृंदावन में था, मुझे फोन आया अमृतसर से, क्या ऐसे प्रभु जी को हो गया, बेहोश हो गए हैं। तो मैंने कहा फिर, कहते उनका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक नहीं हो रहे। मैंने कहा ब्रेन के ऑपरेशन से क्या होगा, कहते या तो इनको पैरालिसिस हो जाएगा, या नजर, ये जबान बंद हो जाएगी, या कुछ और होगा। मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन, हमें नहीं ऑपरेशन कराना। क्या इनसे प्रार्थना की गुरु महाराज से, सारे मंदिरों को बोला हरि नाम करो, अखंड हरि नाम, मंदिरों में अखंड हरि नाम शुरू हो गया। ये वन पीस आपके सामने खड़े हैं, माइक है जी, दे दो ना यार, यहां 13 बजे तुम्हें माइक 13 बजे रखी है। क्यों श्रीमान जी, जो मैंने कहा सच कहा या झूठ कहा?
बिल्कुल ठीक कहा है महाराज जी ने।
परसेंटेज 100% या 95%?
100%।
101 क्यों नहीं कहता तू? ऐसे अनेकों चमत्कार, ये प्रभुपाद की कृपा मदद करती है। इस बेचारे ने समर्पण कर दिया, घर बार छोड़ के आ गया, बाप इसका डायरेक्टर साइंटिस्ट, बड़ा घर छोड़ दिया, मैंने भक्ति करनी है, मां बाप लेने के लिए आ गया, मैंने नहीं जा रहा, जाओ। तो लगा समर्पण जब किया तो गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं, आपकी भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, समर्पण तो करो। अब लीला लगे समर्पण करूं नहीं करूं, करूं नहीं, जाऊं नहीं, ऐसे नहीं, अरे चले जाओ, छोड़ दो उनके जीवन में, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो, तो ये मंगल करेंगे आपका, जरूर मंगल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये आज भी विद्यमान है, यह अनेकों ऐसे भक्त हैं जिनको प्रभुपाद दर्शन देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। बैठिए है। तो बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो राज्यभिषेक की तैयारी हो रही है, और भरत शत्रुघ्न ननसाल में है, और इधर अपना ककेई भी बड़ी खुश है राम जी का भी, क्योंकि राम भगवान बड़े प्रिय है सबके, भगवान है ना, लीला कर रहे, इतनी सुंदर लीला भगवान की, सबके प्रिय भगवान है। दशरथ जी के भी, कौशल्या के भी, ककेई के भी, सुमित्रा के भी, सारे अयोध्या वासियों के। अभिषेक की तैयारी हो गई, उधर से भरत शत्रुघ्न नहीं है, अभी जो अप्सरा देवताओं की भेजी हुई मंत्रा, बड़ी कुटिल, बड़ी दुष्ट। ककेई बचपन से, ककेई जब छोटी थी तो मंथरा साथ में थी, ऐसे उसकी मां की तरह उनके साथ रही। अब ये ककेई को कहती है मंथरा कि देखी राजा की चाल, कहते क्या, देखो भरत शत्रुघ्न को वहां भेज दिया और पीछे से राम का अभिषेक, कहते इसमें तेरे को क्या कष्ट हो रहा है, राम जी सबके प्राण है, कितने अच्छे हैं, राम राजा बनेगा, हम सब सुखी होंगे। कहते तू भी मूर्ख है, मंथरा कह रही है, वो देवताओं की एजेंट है ना वो, तू भी मूर्ख है, तो जानती नहीं कि राजा की चाल, तू जो है फिर कौशल्या के अधीन हो जाएगी, राम जब राजा बनेगा तो कौशल्या के अधीन हो जाएगी, और पराधीन सपने सुख नाही, दूसरों के अधीन होकर किसी को सपने में भी सुख नहीं मिलता, तो मूर्ख है। देखो तो कहते हैं ना, जो बेकार के लोग होते हैं ना, अच्छे अच्छों को वो बदल देते हैं, ऐसा देखा गया है, जो बेकार लोग हैं ना अच्छों को ही बदल देते हैं। इसलिए महाप्रभु ने पता क्या कहा, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं, और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां मिलेंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या मिलेगी, हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण भक्ति की है। अगर आपको साधु संघ से मुझे 5 लाख रुपया मिल गया और मेरी नौकरी लग गई, मेरा एक लड़की के साथ चक्कर था लेकिन शादी नहीं हो रही थी, वो चक्कर चल गया, मेरा शादी हो गई, ये क्या बेकार, कुछ भी नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं। सबसे बड़ी कृपा सिद्धि क्या है, कृष्ण भक्ति वास। जिसको भक्ति मिल गई उसका बेड़ा पार, और जिसको भक्ति नहीं मिली उसका बेड़ा मददधार, वो बेचारा नरक में जाएगा। केवल भक्त ही बच पाएगा, और जो भक्त नहीं है वो नरक में चला जाएगा। जो लोग बीच में से उठ के जा रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा, अभी कथा के बाद भोजन होगा, प्रसाद लेके जाना है, घर में जाके रोटियां पकानी पड़ेंगी, यहां रोटियां पकाने की जरूरत नहीं है, भोजन लेके जाना। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब भी कोई कथा होती है हम भोजन रखते हैं, इनका बड़ा आभारी है हम। अध्यक्ष महोदय जी का तालियां बजा के आप थोड़ा स्वागत कर दो। देखो बड़ा कठिन है इतना मैनेजमेंट करना, सब देखना, रोज भोजन का प्रबंध है। कल रेखा माता तूने भोजन लिया था नहीं, बिना भोजन के चली गई। कल 15 मिनट का जो स्किट था ना, पूरा 1 घंटा लगा था उसको तैयारी करने में, 1 घंटा लगा था पूरा, 10 बार गए थे। खैर आज तो नहीं आया कोई स्किट, आज नहीं है ना, आज 9 बजे ही भोजन हो जाएगा, 9 बजे हम समाप्ति कर देंगे ताकि आप अपने घरों को शांति से जा सको। तो मंथरा जो है ना उसको क्या कहते हैं, क्या शब्द कहेंगे हिंदी में, नहीं कुटिल है क्या, जैसे किसी को पॉइजन करना उसको हिंदी में क्या कहेंगे, उसके कान भर रही है, बार बार जब कह रही है, बार बार कह रही है, आखिर ककेई भी सोचने लगी, नहीं तो ककेई खराब नहीं थी बेचारी, बोलो ककेई माता की, राम जी को चाहती थी, लेकिन बात भी थी अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो रावण कैसे मरता, रावण का ही मरना बड़ा जरूरी था। बार जब समझाया अभी उसको तब ध्यान में आ गया, कहते अच्छा तो मंत्रा पर मैं क्या करूं, तू बता, मैं अब तो असहाय हूं। कहते मैं बताती हूं, तो मैं कहते बता। देखा जब देवासुर संग्राम में तू राजा के साथ गई थी ना, राजा का जो वो रथ का पहिया निकल गया था, तूने पकड़ के रखा था उसको, और राजा बड़े प्रसन्न हुए थे, कहा था मैं देवी तुम्हें 2 वर देता हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें, तो तूने कहा था महाराज समय आने पर मैं वर मांग लूंगी। हां मंत्रा तो अभी क्या मांगना है मुझे, 1 वर में मांगो भरत को राज, और दूसरे वर में राम जी को वनवास। कहते राम जी को वनवास क्यों, कहते वनवास इसलिए कि अगर राम यहां रहे तो लोग तो सब राम को चाहते हैं, मंत्रा कह रही है, तो भरत अपना राज्य जो है ना वो स्थापित नहीं कर सकेगा। अच्छा ठीक है, पहले कके कहती है राम चलो भरत को मैं राज मांग लेती हूं, पर राम जी को वनवास क्यों, नहीं मंत्रा कहती है वनवास मांगो तुम, रावण का भी तो कल्याण करना ना उधर। तो कहा अच्छा अभी कोप भवन में चलेंगी माता ककई और सब खुशियां मना रहे हैं, राम जी का अभिषेक होगा, अयोध्या पूरी सजना शुरू हो गई, सब तैयारियां शुरू हो गई, हमारे राम राजा बनेंगे, बड़े प्रसन्न है सारे अयोध्यावासी। कोप भवन जब माताएं नाराज हो जाएं, खासकर रानी नाराज हो तो कोप भवन में चली जाती, क्रोध है उनको बड़ा, पता नहीं इधर होते हैं बंबई में कोप भवन नहीं यहां तो लोप भवन होते हैं, कोप भवन नहीं होते यहां कोप भवन। तो चली गई तो अभी पता लगा दशरथ जी महाराज को ककई कहां है, ककई कोप भवन, क्या कोप भवन में? दशरथ जी महाराज यहां बहुत बड़ी गलती दशरथ जी से हुई, देखो सीखना है कथाओं से हमने। दशरथ जी कोई भी काम करते थे ना गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर करते थे, बिना गुरु के पूछे हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जब कोप भवन की सूचना मिली तो घबरा गए, भाई क्या हो गया ये, तो गुरु जी को पूछते बजाय के राजाभिषेक की तैयारी हो रही है, राम राजा बनेंगे, तो पूछते गुरु जी ऐसा है तो मैं क्या करूं, तो गुरु तो कहते छोड़ कोप भवन गई तो जाने दे, कोप भवन में लोप होने दे उसको, तुम राम जी को अभिषेक कर। चले गए जब दशरथ जी महाराज तो आगे ककई जी ने बुरी हालत कर रखी है उधर, क्या हुआ देवी बात बताओ तुम, छोड़ो समझा रही है, बड़े नखरे कर रही है ककई माता, क्योंकि मंत्रा ने ऐसी मंत्रणा कर दी है उसको, पागल करके रख दिया उसको, वो सारी ट्रेनिंग दी है, तू जब तक राजा पक्का ना हो जाए, राम की सुगंध ना उठाए तब तक नहीं बोलना कुछ भी। कहते महाराज छोड़िए आप, बोलो देवी तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, आज इतनी खुशी का दिन है, मैं तुम्हें जो कहूंगी वो दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। कहते महाराज वचन आपने, आप मुझे विश्वास दिलाने के लिए राम की सुगंध उठाओ, मैं राम की सुगंध उठाता हूं, तुम वचन देता हूं, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। कहते हमारे सुनिए, अभी ककई बैठ गई जरा अच्छी तरह से, हमारे सुनिए आप देवासुर संग्राम में मैं आपके साथ की थी, यहां गई थी, आपने दो बार दिए थे, मैंने आज तक नहीं मांगे, तो अभी आप जो है मुझे वो दो बार दीजिए। बोलो देवी क्या चाहिए तुम्हें, मुझे पहले बार में भरत को राज, दशरथ जी बड़े दुखी हो गया, राम दशरथ खैर सहन हो गया उनसे अच्छा, और दूसरे बार में राम को 14 वर्ष का बनवा, जब ये कहा दशरथ जी गिर पड़े नीचे बेहोश हो गया हो, तब दशरथ जी ने कहा कि स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना। चाणक्य जी ने भी कहा, चाणक्य पंडित ने कहा नेवर ट्रस्ट ए पॉलिटिशियन एंड ए वूमेन, चाणक्य जी ने ऐसा कहा, लेकिन आज हम औरतों के गुलाम बने हुए हैं। अभी पत्नी कहती है कम हियर, यस डार्लिंग सिट डाउन, यस डार्लिंग स्टैंड अप, यस डार्लिंग गो देयर, यस डार्लिंग गो हियर, यस डार्लिंग यस, नो तो है ही नहीं। एक बार शिकागो में थे हम, तो वहां एक व्यक्ति पंजाबी भाई, वो सत्संग में आए और बड़े खुश हुए, कहते महाराज मैनू बड़ा चंगा सत्संग लगा तुहाडा, मेरे घर भी करोगे? मैं जी यारा काम ही साडा हुई है, हूं इतने आया सीधे सत्संग ही करना आया, और की करना है इतने, पंजाबी समझते हो आप लोग ने सभी? एक पंजाबी कहता मैं समझता हूं, बाकी पूछ रहा हूं मैं, तुम मुना पंजाबी है ना, कितों का रहने वाला? अमृतसर दिल्ली पीछे पाकिस्तान है ना, फोर फादर्स पाकिस्तान। तो मैं जी करांगे तुहाडे घर सत्संग, करेंगे सब पंजाबी समझते नहीं, हिंदी बोलूं जा के इनको पंजाबी सुनने का शौक हो रहा है अकेले बात करूंगा जिनको पंजाबी में कहनी है। तो अब मेरे घर सत्संग, मैं बस पंजाबी में बातें हो रही है, मैं अनुवाद बता रहा हूं, मैं करूंगा। कहते शनिवार कैसा रहेगा? मैं शनिवार ठीक है, मैंने शनिवार के लिए बहुत लोग कह रहे हैं पर अभी किसी का कंफर्म नहीं हुआ, तो आपके घर। कहते हमारे सब ठीक है, टाइम फिक्स हो गया। कहते फिर ऐसा है मैं कंफर्मेशन आपको बाद में दूंगा। मैंने अच्छा जी, तो पता नहीं कौन सा दिन था, ये ट्यूसडे था या मंडे था, कोई ऐसा ही दिन था। वो जी कहते मैं कल कंफर्मेशन दूंगा। घर में गए जो कंफर्मेशन ही कोई नहीं, अभी लोग कह रहे सैटरडे, मैं जी एक बुक करके गया था, कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। मैंने फोन उठाया, मैंने श्रीमान जी, हाँ जी स्वामी जी, मैंने आपने वो प्रोग्राम, माता जी बैठो प्रसाद लेके जाना है आपने, मैंने कहा सत्संग रखा था लेकिन कंफर्म नहीं किया। कहते महाराज क्या बताऊंगा आपको, मैंने क्या समस्या हुई। कहते मैं बड़ी खुशी से घर में आया, घर में घरवाली को कहा, मेरा गला थोड़ा खराब है, पूरी तरह बोल नहीं सकता, गला ना बैठ जाए मेरा। कहते घर में आया जब तो घरवाली को कहा मैंने सत्संग रखा है, शनिवार का जब हमने नाम लिया, कहते किसको पूछ के रखा था सत्संग, शनिवार में उठे जाना गया, वही करना गया, वो करना, सत्संग सत्संग ले आया। कह रहा स्वामी जी कि तुम आ गए स्वामी जी तेरे बाद। कहते मैं तो डर गया जी, मैं कंबल लग गया, घबरा आ गया मैं क्यों उनकी होएगा। तो मैं महाराज तुहानू नाम नहीं कर सकिया, फोन भी नहीं कर सकिया, मैं माफ कर दियो तुसी। तो देखो ये हालत हो गई है, माताएं डांटती हैं, शोर मचाती हैं, क्योंकि भक्ति खत्म हो गई ना। भक्ति आने से, महामंत्र का जप करने से, चार नियमों का पालन करने से माताओं का हृदय भी सौम्य हो जाएगा, पुरुष भी अच्छे हो जाए। ये नहीं कि माताएं खराब है, केवल पुरुष भी बड़े दुष्ट होते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, है? बुरी गति करते हैं, बुरा बुरा है, चाहे कोई भी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, हमने अच्छे बनना है और अच्छे हम केवल भक्ति के द्वारा बन सकेंगे। तो अभी जब ये कहा, दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, राम जी को वनवास, कुछ नहीं कह सकते बेचारे। अभी उधर से दशरथ जी अचेत पड़े हैं, उधर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही। गलती दशरथ जी की बता रहा था, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को नहीं पूछा, गुरु को नहीं पूछा, कब पूछ लेते तो। खैर मुसीबत जो आनी थी, होनहार बलवान के होते चिकने पात, होनहार को कौन टाल सकता है। एक बार एक बड़े ही था, जो तरखान, बड़े ही कहते हैं ना उसको, कारपेंटर। एक कारपेंटर जो था, ये बड़ा पहुंचा हुआ था, बड़ा भक्त था भगवान का, त्रिकालज्ञ था, वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाला था। तो वो कुछ ऐसे फटिंगे तैयार कर रहा है, वो काट रहा है, बना रहा है। तो एक महात्मा के कहते भिक्षा हम दे, भिक्षा दो। कहते महाराज रुक जाओ, मेरे बेटे की अभी अभी बाजू टूटेगी, टूटी नहीं है, टूटेगी, वो आएगा तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूं, ये फटिंगे बांधने की। कहते बड़ा मूर्ख है, तेरे बेटे की बाजू टूटी नहीं, जाके रोकता क्यों नहीं। अच्छा महाराज ये वृक्ष देख रहे हो। कहते हाँ देखा, कल आपको यही फांसी लगेगी। है बड़ा बड़ा त्रिकाल के बड़ी बातें। तो महात्मा को थोड़ी शंका से हुई, रुक गए वहां पर थोड़ी देर में, कि लोग उसके बेटे को उठा कर लिया, इसकी बाजू टूट गई। कहते ओह इसकी ये बात सच हुई तो कल मेरे को फांसी भी जरूर ही लगेगी। फिर वृक्ष जो बताया, महात्मा भागे वहां से, भागते 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 बड़ी दूर चले गए, पता नहीं कितने माइल, कितने किलोमीटर दूर चले गए। भाई वृक्ष से दूर जाना ना, बचना है मेरे, कल मुझे फांसी लगेगी। उसने कहा सच्ची होगा। तो आगे से रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, रथ में राजकुमारी बैठी हुई है, राजकुमारी बैठी है, और पीछे दो अंगरक्षक हैं, घुड़सवार और सारथी। सारथी ने महात्मा के पास आकर के रथ को रोक दिया और उंगली दिखाई, कहते मैं परेशान हूं, आप जरा घोड़ों की ये लगाम पकड़ के रखो। तो महात्मा सोचने लगे, अच्छा भाई ये परेशान है, और आपकी लगाम जैसे घोड़ों की पकड़ी, वो नीचे उतरा, घोड़े भागे 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 भागे, जैसे प्रभुपाद ने एक बार कहा था, पागे भागे 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 भागे, इतने भागे कहां के खड़े हुए जहां वो वृक्ष था। देखा ये वही वृक्ष, पीछे से वो जो अंगरक्षक थे ना घुड़सवार, उन्होंने कहा ये कोई कपटी साधु है, ये राजकुमारी को भगा के ले जाने लगा। उन्होंने उसका कहा अरे बदमाश, टांग दिया, मार दिया, फांसी दे दी इसको, फांसी लग गई। तो होनहार को कौन टाल सकता है मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, होनहार बलवान के होते चिकने पात, होनहार को टालना बड़ा कठिन है। तो अभी बेहोश पड़े मंथरा जल्दी से राम जी को भेजना चाहती है वनवास। तो अभी सूचना मिली कहां के राजा के कोप भवन में क्या कर रहे हैं पता लगा, ऐसे ऐसे सारी बात का पता लगा। उधर से राम जी को बुलाया, राम जी आ गए। राम जी पूछते हैं, माते क्या बात? कहते बेटा तेरे पिता ने मुझे दो वचन दिए थे, आज उनके बदले मैंने एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को वनवास मांगा है, तो बेटा वनवास की तैयारी करो, इसलिए तुम्हारे पिता दुखी हो रहे हैं, ये वचन अपना पूरा करने में थोड़े से अक्षम है, उन्होंने वचन दिया है। माता चिंता नहीं, अभी कहां राज्याभिषेक और कहां वनवास, ये हमारे राम भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो बस अभी राजा बनना था, अभी क्या? तो राम जी कहते हैं मेरे पिता ने तो मुझे बनों का राजा दे दिया, बनों का राज्य दे दिया, वहां आनंद से रहूंगा, हैं मंगल होगा, सब अच्छा होगा, तैयार हो गए। अभी मंत्रा कहती है जल्दी से वस्त्र बदलो, वनवासी भेष पहनना है, राजाओं का भेष नहीं। उधर से माता जानकी को पता लगा, सीता जी को पता लगा कि राम जी वनवास में जा रहे हैं, आ गई। कहते प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम कहते हैं देखो देवी, पिता ने वनवास मुझे दिया है, अगर तुम वन में मेरे साथ जाओगी लोग क्या कहेंगे कि वन में भी पत्नी को साथ ले गया, इसलिए तुम यहीं रहो और मेरे माता पिता की सेवा करना, 14 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगा। अब माता जानकी सती नारी, माताओं को शिक्षा लेनी है, मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे कहेंगे जब तक तो पति महलों में रहता था तब साथ थी, वनवास हो गया तो छोड़ दिया। राम जी के पास कोई जवाब नहीं है। एक भजन मैं छोटा सा गाता था, कहो तो आपको भी सुना दूं।
तुम गाना पीछे।
राम जी कहते हैं जानकी को, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर, मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर, मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग तेरे, नहीं है सीते वो योग तेरे। जब कोई छोटी नारी कैसे उत्तर देती है, वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पा, वो दुख सारे कटेंगे सारे, निस दिन तुम्हारे दर्शन।
मां ने जवाब दिया वो दुख जितने भी जंगलों के हैं ना, मैं रोज आपके दर्शन करूंगी और सुख से कट जाएंगे। ये हमारी संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति जो आज लोप हो रही है। लोप होने का अर्थ हम सबको नरक में जाना पड़ेगा, फिर हम नरक से नहीं निकल पाएंगे। आज अगर हम सीताराम की कृपा से, राधे श्याम की कृपा से, राधा रास प्यारी की कृपा से, गौर निताय की कृपा से अपनी संस्कृति को पुनः लाते हैं तो नरक में जाने से बच सकते हैं, नहीं तो नरक, घोर नरक प्रतीक्षा कर रहा है, हम समझें या ना समझें। फिर राम जी क्या कहते हैं, जंगलों में होते हैं खार कांटे,
जंगलों में होते हैं खार कांटे,
छुबेंगे सीते वो चलते चलते,
छुबेंगे सीते वो चलते चलते।
देखो भगवान कहते हैं जंगलों में खार कांटे पत्थर होते हैं, वो देवी चलते चलते पांव में चुभेंगे। अभी माता का क्या जवाब यहां पर,
मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर। मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। रहो
अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती।
अभी राम जी जो है ना, किसी ढंग से भी माता जानकी को नहीं समझा सके, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है सुख दुख में स्त्री को अपने पति के साथ रहना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये राम जी की शिक्षा है, ये सीता माता की शिक्षा है। लेकिन विदेशियों की शिक्षा क्या है, मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। देखो जो देश का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो राष्ट्रपिता उसे कहते हैं। तो अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था कैनेडी, JF Kennedy, राष्ट्रपिता हुआ ना, उसकी पत्नी कौन हुई, राष्ट्रमाता। लेकिन क्या हुआ, राष्ट्रपिता को गोली से मार दिया किसी ने, राष्ट्रपिता जो है मर गए। अब राष्ट्रमाता ने क्या किया, ये विदेशी सभ्यता बता रहा हूं, उसने दूसरी शादी कर ली। एक अरबपति, अरबों पति था वो, जहाज थे उसके, उससे शादी कर ली। हिस्ट्री है, सब जानते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। अपनी संस्कृति सीताराम की कृपा हम लेंगे, इनकी कृपा से आगे बढ़ेंगे तो हम नरक से बचेंगे, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। तो माता की दलीलें ऐसी थी, राम जी कुछ नहीं कह सके। अच्छा तुम्हारी इच्छा, तैयार हो जाओ चलने के लिए। लक्ष्मण जी को पता लगा राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के प्राण राम है, राम जी के प्राण लक्ष्मण है। वो राम जी उनको भी समझा रहे हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। क्रोध आया लक्ष्मण जी को, क्योंकि वो शेष जी के अवतार हैं। शांत किया राम जी को, राम जी ने कहा भैया क्रोध करने का समय ये नहीं है। वनवासी भेष पहन करके राम लक्ष्मण जानकी बेचारे वनवास को तैयार हो गए, चल पड़े। मंथरा बड़ी प्रसन्न, राम जी को वनवास हो गया। तो अभी अयोध्या वासियों को जब पता लगा, सारे अयोध्या वासियों के प्राण हैं भगवान राम, सारे अयोध्या वासी राम जी को अपने प्राणों की तरह मानते हैं, सारे अयोध्या वासी तैयार हो गए। जहां आप जाएंगे, यहां आप रहेंगे, वहीं हम आपके, हम नहीं यहां रहना, हम वहीं अपनी नगरी बसा लेंगे। जमात करा मां जहां लोग इकट्ठे हो जाए, तो चल पड़े। अभी राम जी कैसे समझाएं उनको, राम जी चल पड़े हैं। सुमंत्र जी उनके साथ में हैं, और क्या हुआ, अब राम जी जब चल पड़े, उधर से दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, सुमंत्र जी को समझा रहे हैं, इनको समझा जाके वापस ले आओ। लेकिन राम जी वचन के बड़े पक्के हैं, मेरे पिता ने अगर मेरी मां को वचन दिया है तो पूरा करना चाहिए। देखो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति, बाप का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, राजा के प्रजा के प्रति, हर बात इसमें मिलती है। हमने तो राम राज्य की कल्पना की थी ना, कहां राम राज्य है, राम राज्य नहीं। एक बात वैसे है बड़ी कठोर, अगर आप कहो तो बता दूं, बड़ी कठोर सी बात है। एक बार यूपी में जब स्वतंत्र भारत हुआ तो बड़ी, देखो अंग्रेजों के राज में, मैंने प्रभुपाद के लेक्चर में भी सुना, अंग्रेजों के राज में लॉ एंड ऑर्डर था, आज कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, कितने बम विस्फोट हुए, मर रहे हैं लोग, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे गाजर बुलियां काट दी जाती हैं, सब हमारी कमी है, ये दुर्भाग्य हमारा। तो कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, कहते हैं जब भारत स्वतंत्र होगा तो राम राज्य आएगा। क्या है राम राज्य? उस समय यूपी में सुचिता कृपलानी जो थी वो चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, लाइन ऑर्डर खत्म हो गया क्योंकि सब कुर्सियां संभालने में लगे हैं बेचारे हैं, वो भी नहीं संभलती, देश का कहां ध्यान कर, इनके पास समय नहीं है देश का ध्यान करने के लिए। पर पांच साल में आया हूं पता नहीं, फिर आना नहीं आना, जेब में भरो हैं, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, जेब में भरो सारे। एक बार एक पुल के ऊपर से हम गुजरे तो पुल टूट रहा है, नया बनाऊंगा। तुम्हारे साथ एक बैठे थे भगवान जी तुलसियान, मैं ये पुल ही टूट रहा है क्या, उसने ही मुझे कहा, कहते रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। क्योंकि ठेकेदार कैसे करेगा, इंजीनियर, किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 5%, और परसेंटेज में सारा चला जाता, क्या लगाएगा उधर। ये तो हो गया, सबको मिनिस्टरों की परसेंटेज है, सबको दुर्गति हो रही है भारत की, समय नहीं किसी के पास। तो बुजुर्ग बेचारे परेशान, जिन्होंने अंग्रेजों का राज देखा था, सुचिता कृपलानी थी उस समय यूपी की चीफ मिनिस्टर, भारत की प्राइम मिनिस्टर थी मैडम, कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बड़ा पाप करवा दिया लोगों से, ये जो फैमिली प्लानिंग है ना, इंदिरा गांधी की देन है। और कोई हिंदू परिवार, कोई बिरला बचा होगा जिसने बच्चे नहीं मारे, 10 से 15 करोड़ बच्चे आज तक मारे जा चुके हैं हिंदू, करोड़ों के करोड़ों बच्चे मारे जा गए। कोई एक बार पटियाला से कुछ माताएं आई, मैंने माता जी को बच्चा तो नहीं मारा, कोई कहती है 2, कोई कहती है 3, कोई कहती है 1, कोई बच्चे नहीं, सबने मारे हुए। और भ्रूण हत्या से तो भगवान कभी मिलेंगे नहीं, असहाय बच्चे को मार देना, ओहो इससे कोई बड़ा पाप नहीं, ये हमारी मैडम की देन है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, उनमें से एक बड़ा बड़ा गुस्सा आया उसको, कहते रामराज, कहते यूपी में बांझ राज, सुचिता कृपलानी का बच्चा कोई नहीं था, बांझ बांझ समझते नहीं, यूपी में बांझ राज और हिंदुस्तान में राण राज, क्योंकि इंदिरा गांधी का खसम तो मर गया था फिरोज खान, यूपी में बांझ राज, हिंदुस्तान में राण राज, और इन दोनों के ऊपर कामराज, कामराज प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, कहां से आएगा रामराज। इनके के रामराज आएगा, उस बेचारे ने छठे पोके ने बड़े दुखी होकर ये कहा, रामराज की कल्पना करते हैं, ये लाएंगे रामराज हमारे गुरु महाराज, चैतन्य राज्य आएगा, चैतन्य महाप्रभु वही राम है, वही कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है। कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई कोई भेदभाव नहीं, सब खत्म भेदभाव कर दिया उन्होंने, जाति पाति का, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का। एक नारा है, ना हिंदू बुरा है, ना सिख, ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान बुरा है, करता है जो बुरे काम वो इंसान बुरा है। तो इनकी कृपा से इन्होंने, अभी आज मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था प्रभुपाद जी की संडी योग में, जिसने सुननी होगी, मैंने कहा इसको प्रिंट आउट निकालो। उसमें एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है प्रभुपाद जी को, कहती है आप ये 4 वर्ण बना रहे, क्षत्रिय क्या करेंगे, कहते मारेंगे, कहते किसको मारेंगे, कहते मान लो तुम यहां अपने कमरे में हो, कोई आकर तेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, शास्त्र कहता है प्रिंसिपल यह है कि उसको मारो, जान से मार दो, कोई पाप नहीं। शिक्षा प्रभुपाद जी, ये क्षत्रिय क्या करेंगे आपके, कि आई होप कि वन डे अवर डिवोटी विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, भक्त प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का, ये प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त की। आज कमी क्या है, ये नास्तिक हैं, हैं ये भगवान में नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष, लूट रहे हैं देश को, और हिंदू कहते लूटो भाई हमको लूटो, तुम नरक में जा रहे हो हम भी साथ चलेंगे, बड़ा दुर्भाग्य हो गया। प्रभुपाद जगाने आए हमको, जागो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, हैं उठ जाग मुसाफर भोर भाई, अब रैन कहां जो सोवत है, जागो आंखें खोलो, चैतन्य शरण लो, महामंत्र जपो, 4 नियमों का पालन करो, अंदर शुद्धि होने से आप सच्चाई के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे अर्जुन सच्चाई के लिए आगे बढ़े। अर्जुन जी ने भगवान के कहने पर अपने परिजनों को मारा, परिवार के लोगों को मारा, पहले हाथ खड़े कर दिए, गांडीव धनुष नीचे फेंक दिया, प्रभु मैं लड़ूंगा नहीं। अभी राम लक्ष्मण जानकी जो है, सुमंत्र जी उनके साथ हैं, सारे अयोध्यावासी तैयार हो गए, जहां राम रहेंगे वहां रहेंगे, कैसे है राम, ऐसा राजा होना चाहिए। सारे अयोध्यावासी राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम
हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे,
हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम जी अभी कैसे समझाएं, उनके साथ सुमंत्र जी के साथ सारे अयोध्या वासियों के साथ साथ चल पड़े। तो दो बातें आती हैं, एक बात वर्णन ऐसा आता है, दोनों बातों से कोई शिक्षा लेनी है। तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो राम जी जो हैं रात को सब सोए, विश्राम किए, सारे अयोध्या वासी साथ में हैं। जब सोए तो अर्धरात्रि को उठ करके राम लक्ष्मण जानकी चले गए, उन बिचारों को सोए हुए छोड़ के अयोध्या वासियों को चले गए। एक तो ये वर्णन आता है, एक वर्णन ये आता है उससे बस शिक्षा वाला वर्णन है। उन्होंने राम जी ने कहा भाई आप सब स्त्री पुरुष वापस जाओ, जो जिसको प्रेम करता हो ना उसकी आज्ञा पालन करता है। सब स्त्री पुरुषों को वापस जाने के लिए कहा। 14 वर्ष के बाद जब राम जी वापस आए तो उन्होंने देखा कुछ लोग वही हैं भाई, पर मैंने कहा था भाई आप सब वापस जाओ, आप नहीं गए। कहते महाराज हम ना स्त्री ना पुरुष, समझे नहीं, हिजड़े हिजड़े समझे नहीं, क्या कहते नहीं, यूनिक क्या कहते हैं उनको, किन्नर, हिंदी में किन्नर, इंग्लिश में यूनक। तो राम जी कहते आप 14 वर्ष यहीं रहे? कहते हम यहीं रहे। जाओ मैं तुमको वर देता हूं राम, अपना कलयुग में तुम लोगों का राज होगा। ये जो भी राजा है ना ये उनके ही वो है, उनके डिसेंडेंट है, समझे नहीं, राम जी का दिया हुआ वरदान है। तो काम वैसे कर रहे हैं जैसा आदमी की जात हो वैसा काम करता है। राजा को तो बड़ा पवित्र होना चाहिए, मन उसका साफ होना चाहिए, हैं? उसको न्याय पूरा करना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, प्रजा का पालन अपनी वो संतान की तरह करे, तब वो अच्छा राजा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जनता मर रही है, दुर्गति जनता की हो रही है, लेकिन पालन नहीं। तो राम राज्य की कल्पना जो है ना बड़ी दिव्य थी, लेकिन नहीं हो पा रही पूरी। लेकिन हमने जीवन काल में आशा लगा रखी है कि प्रभुपाद जी जरूर राम राज्य भारत में लाएंगे, हम सब मिलकर प्रयास करें और राम राज्य भारत में आए। तो ऐसे राम जी वनवास में चले गए। समय समाप्त हो रहा है, अभी आज की कथा को भी विराम देते हैं क्योंकि 9 बजे से हमने आगे नहीं बढ़ना। अभी 2 मिनट है 9 बजने में, है ना, 2 मिनट पहले ही कथा को विराम दिया जाता है। और हम आपसे आशा करते हैं, माताओं से और भक्तों से, कृपया आज भी कथा समय पर प्रारंभ हुई थी, आप सब देर से आते हो, देर से नहीं आओ, देखो उससे लाभ नहीं होता, पुण्य नहीं मिलता। ऐसा बताया है, पहले ऐसा होता था कि श्रोता और वक्ता, श्रोता जो होते सुनने वाले, वक्ता की प्रतीक्षा करते थे कि वक्ता आएंगे कथा सुनाएंगे। कलयुग का प्रभाव, अभी वक्ता प्रतीक्षा करते हैं कि श्रोता आए तो मैं कथा शुरू करूं। लेकिन हमने कथा शुरू कर दी थी, कुछ ही माताएं दो बैठी थी, सबसे पहले आई हैं माताएं, तो हमने ठीक समय पर शुरू कर दी थी। तो कल भी प्रयास यही होगा, कल और परसों 2 दिन कथा और है। आप कृपया पधारो और इस राम कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लो और पुण्य के भागी बनो, राम कृपा प्राप्त करो, सब पर राम जी कृपा करें, सबको अपनी भक्ति का दान दें ताकि हम इस जन्म में अपने घर को वापस लौटे और सुखपूर्वक भगवान की सेवा करें। बोलो रामचंद्र भगवान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, बोलो जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, बोलो जानकी, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय।
हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
बिहारी की
जय
श्री गौर निताय पंच तत्व की पूरी गुरु परंपरा की श्री प्रभुपाद की
हरे कृष्ण।